ऐसे में तो अब हमें भी तुम्हारी बीवी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भाई साहब अब अपने घर का वारिस किसी बदचलन औरत से चाहेंगे। अरुणिमा ने रायचंद परिवार के नाम और प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाला है, और उसके बाद क्या पता अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाए तो वो तुम्हारा बच्चा होगा भी या नहीं, हो सकता है किसी और के साथ। अपनी जुबान पर लगाम रखकर बात कीजिए चाची जी, कहीं ऐसा ना हो कि अरुणिमा के लिए न सही लेकिन मेरी बीवी के कैरेक्टर को जज करने के लिए मेरे हाथों मेरे परिवार के किसी सदस्य का खून हो जाए। आस्तिक ने गुस्से भरी जुबान में चाची को देखते हुए कहा। इस समय उनके सामने कोई और नहीं बल्कि आस्तिक की चाची थी। ये चाची रिश्ते में चेतन और बेला की मौसी लगती थी। ये बेला की माँ की दूर की रिश्तेदार थीं। अपनी बहन की मौत के बाद उन्होंने अपनी बहन के बच्चों को संभालने के लिए आस्तिक के चाचा से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही आस्तिक के चाचा का एक हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इन मोहतरमा का नाम था खुशबू रायचंद। ये आस्तिक की चाची और चेतन व बेला की मौसी लगती थीं। खुशबू जी की अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने हमेशा चेतन और बेला की परवरिश में ही अपना सारा ध्यान लगाया था। वो इस घर में सिर्फ आग में घी डालने का काम करती थीं, इसलिए ज्यादातर इस घर से बाहर ही रहा करती थीं। उन्हें हमेशा लगता था कि चेतन और बेला को वो हक नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, इसलिए वो हमेशा इन दोनों के हक के लिए खड़ी रहती थीं। आस्तिक और अरुणिमा की शादी में वो अकेली ऐसी शख्स थीं जो इस शादी के खिलाफ थीं, और ये कभी भी मौका नहीं छोड़ती थीं आस्तिक या उसके परिवार के किसी एक को ताने मारने का। सब लोग इनके कड़वे व्यवहार से वाकिफ थे, इसलिए कोई भी इनके साथ उलझना नहीं चाहता था। खुशबू मौसी गुस्से में बेला के पास आ गई और बेला को घूरते हुए मौसी को नजरों से चुप रहने का इशारा किया, लेकिन खुशबू मौसी पीछे कहाँ रहने वाली थी। उन्होंने अपने हाथ बांधते हुए कहा, मुझे क्यों चुप करवा रही हो, जो सच है वही तो कह रही हूँ। वो लड़की मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी इस घर की बहू के रूप में, लेकिन पता नहीं क्यों सबको किया भूत सवार था जो उसे घर की बहू बना दिया। अब देखो उसने क्या किया है, इस घर का मान सम्मान प्रतिष्ठा सबको एक मिनट में धूल में मिला दिया है। अरुणिमा के बारे में आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है चाची जी, उसके लिए मैं बैठा हूँ, और मेरी बीवी इस घर को वारिस देगी या नहीं ये फैसला मेरा और मेरी बीवी का होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इस घर के वारिस के लिए आप और किससे उम्मीद लगा सकती हैं। आस्तिक ने ये बात खुशबू मौसी को ताना मारते हुए कही। उनका चेहरा गुस्से में सख्त हो गया था, वो घूरती हुई नज़रों से आस्तिक को देख रही थी, और गुस्से में उन्होंने आस्तिक से कहा, भाई साहब इस चीज़ के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तुम्हारी बीवी एक बदचलन लड़की है और सबके सामने उसके रंगरलियों की फुटेज चल रही है। इतने सालों से तुम्हारे परिवार ने जो इज्जत समाज में कमाई थी तुम्हारी बीवी ने वो सारी गमा दी है, और भाई साहब इस बात से बहुत नाराज होंगे। देखना वो कभी भी तुम्हारी बीवी से इस घर का वारिस देने की उम्मीद नहीं करेंगे। इस घर के वंश को अगर कोई आगे बढ़ाएगी तो वो है मेरी बहू अरुणिमा आस्तिक रायचंद। ये आवाज पुष्कर जी की थी जो गलियारे में गूंज करी। उनकी कड़क आवाज सुनकर सब लोग पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ पर पुष्कर जी और नेहा जी साथ में आ रहे थे। नेहा जी को देखकर खुशबू मौसी की आंखों में नफरत साफ नजर आ रही थी। वो शुरू से ही इस औरत से नफरत करती थी, लेकिन इस समय नेहा जी पावर में थी इसलिए वो कुछ नहीं पा रही थी। पुष्कर जी वहां आते हैं और सबको अपनी घूरती हुई नजरों से देखना शुरू करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, बाहर जो फुटेज चल रहा है उसके बाद भी आप इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि अरुणिमा हमारे घर को वारिस दे सकती है? अगर ये कोई मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है, मौसी जी ने नफरत से उन दोनों को देखते हुए कहा। लेकिन पुष्कर जी की आवाज का दम ऐसा था कि वो वहां के माहौल को शांत करवाने के लिए काफी था। उन्होंने घूरती हुई नजरों से खुशबू मौसी को देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि अपने परिवार के अगले वंश के लिए मैं मजाक करूंगा? लेकिन भाई साहब आप अरुणिमा से वारिस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपने देखा नहीं वो लड़की किसी गैर मर्द के साथ आस्तिक के कमरे में किस हालत में थी? मौसी किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी और अरुणिमा पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन पुष्कर जी ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर पटकी। उसके बाद किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आस्तिक के चेहरे पर गुस्सा जरूर था लेकिन अपने पिता के सामने उसने भी अपनी आवाज बंद रखी। बेला तो पुष्कर जी के वहां आते ही खामोश हो गई थी। हाँ देखा मैंने वीडियो जो सबने देखा, लेकिन क्या तुमने नहीं देखा कि अरुणिमा को नशा दिया गया था? वो होश में नहीं थी, ये बात उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें लगता है खुशबू मैं बेवकूफ हूँ? इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और माफिया का बिजनेस मैंने क्या अंताक्षरी खेलते हुए बनाया है? इंसान को देखकर चेहरा पहचान लेता हूँ मैं। मेरे अपने घर में कितने सांप और कितने अजगर बैठे हुए हैं मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन अगर मैं सबकी सच्चाई पर से पर्दा उठाना शुरू कर दूं तो रायचंद परिवार एक दिन में बिखर जाएगा। इसलिए अगर रिश्ते बचाने के लिए खामोश रहना पड़े तो इसमें बुराई क्या है? और जहाँ तक बात रही अरुणिमा की, तो मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो राह चलते किसी लड़की से आस्तिक की शादी करवा दूँ। अरुणिमा के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जितनी मासूम और भोली है उतनी ही समझदार भी है। ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत वो खुद से नहीं करेगी। वीडियो में साफ साफ पता चल रहा था कि उसे नशा दिया गया है। अरुणिमा ने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है, ये बात सब जानते हैं। पुष्कर जी ने सबके मुंह पर ताले लगाते हुए ये बात कही, लेकिन खुशबू मौसी को अभी भी चैन नहीं था। उन्होंने घूरती हुई नजरों से पुष्कर जी को देखकर कहा, लेकिन भाई साहब सिर्फ आपको भरोसा है इसीलिए तो आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं।
क्या भरोसा है कि वो लड़की आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए सही है या नहीं, और क्या गारंटी है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो ये बच्चा आस्तिक का ही होगा? नेहा जी को अब गुस्सा आने लगा था। उन्होंने अपने गुस्से को जितनी मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था, उतना ही खुशबू मौसी ने उसे बाहर निकालने पर तुली हुई थी। उन्होंने गुस्से में खुशबू मौसी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत हो गया खुशबू, अपनी जुबान बंद करो। हमने तुम्हें यहाँ अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम तो यहाँ आकर हमारी ही बहू पर इल्जाम लगा रही हो।
इल्जाम नहीं लगा रही हूँ भाभी, सवाल कर रही हूँ, क्योंकि ये घर मेरा भी है और इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है। मैं यहाँ सिर्फ चेतन और बेला की मौसी नहीं हूँ, बल्कि आपकी देवरानी भी हूँ। रायचंद परिवार की बहू हूँ मैं, और इस हक से कह रही हूँ कि एक ऐसी लड़की जिसने हमारे परिवार की मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है, वो इस घर के वारिस को कैसे जन्म दे सकती है?
तो तुम क्या चाहती हो खुशबू? अगर अरुणिमा नहीं तो फिर हमें वारिस कौन देगा? जहाँ तक मुझे पता है, चेतन इस लायक नहीं है कि बच्चा पैदा कर सके।
खुशबू मौसी के हाथों की मुठ्ठियाँ कस गईं। उन्होंने घूरती हुई नजरों से आस्तिक को देखा, जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, और वो अपनी आंखों से ही मौसी को चैलेंज कर रहा था। मौसी ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहा, चेतन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, वो दवाइयाँ ले रहा है और अपना इलाज भी करवा रहा है, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप तो जानते हैं ना भाई साहब, हाई स्कूल तक उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था, फिर पता नहीं कैसे।
कैसे, क्या, कब, क्यों, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है खुशबू। तुम इस घर की बहू हो, इसे हमने कभी नकारा नहीं है। मेरे छोटे भाई के गुजरने के बाद भी मैंने तुम्हें वही सम्मान और जगह दी है जो उसकी पत्नी का होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बहू पर उंगली उठाओगी। अरुणिमा का चयन मैंने बहुत सोच समझ कर किया है, और चलो ठीक है, मान लिया कि चेतन अपना इलाज करवा रहा है, तो तुम बताओ वो कब तक ठीक होगा? कितना समय लगेगा उसे ठीक होने में? उसके बाद शादी का छोड़ो, क्या गारंटी है कि वो ठीक होने के बाद वारिस देने के लायक रहेगा? कहो खुशबू, गारंटी दे सकती हो? लेकिन भाई साहब, खुशबू मौसी ने कुछ और कहने के लिए अपनी जुबान खोली ली थी कि आस्तिक बीच में आ गया। उसने अरुणिमा का बचाव करते हुए खुशबू मौसी को देखा और कहा, मौसी जी, आपको नहीं लगता कि आप इस बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हैं? जब मुझे और मेरे परिवार को अरुणिमा से कोई शिकायत नहीं है, तो आप क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं? ऐसा तो नहीं कि उसके बच्चा पैदा करने से या ना करने से आपका कोई फायदा या नुकसान हो? वैसे भी आपको चेतन के इलाज पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरी बीवी के ऊपर। उसे संभालने के लिए मैं हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है, मेरी बीवी इतनी बेवकूफ नहीं है कि शादीशुदा होते हुए भी किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता रखे। दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि अरुणिमा को नशे की चीज़ देकर कमरे में ले जाया गया था, वरना अरुणिमा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जब मुझे मेरी बीवी पर भरोसा है, तो फिर आप क्यों सबको उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं? बेला ने खुशबू मौसी का हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा, मौसी, जब इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों उनके बीच में बोल रही हैं? वैसे भी अरुणिमा भाई से प्रेग्नेंट हो या किसी और से, ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, वैसे भी चेतन भाई काफी देर से नजर नहीं आ रहे हैं, चलकर उन्हें ढूंढते हैं। ऐसा कहते हुए बेला खुशबू मौसी को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है, लेकिन नेहा जी की आंखों में जो नफरत थी वो साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस ली थीं। आस्तिक अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, इतने सबके बाद मैं पार्टी में और नहीं रुक पाऊंगा। पुष्कर जी गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम अरुणिमा को लेकर घर जाओ, रात काफ़ी हो गई है। वैसे भी मैं पार्टी खत्म करने की अनाउंसमेंट करने ही वाला था, पर वीडियो की वजह से कुछ लोगों को सफाई देना जरूरी हो गया। तुम फिक्र मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा, फिलहाल अरुणिमा को संभालो। आस्तिक हाँ में सर हिलाते हुए वहां से निकल जाता है। वो पीछे के गेट से वापस पार्किंग एरिया में जाता है तो देखता है कि अरुणिमा अभी भी नशे में है और आभा उसे संभाले खड़ी है। तिवारी जी गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़े हैं, लेकिन अरुणिमा गाड़ी में बैठने के लिए नाटक कर रही है। आस्तिक अरुणिमा और आभा के पास पहुंचता है, जो गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन अरुणिमा अपने कदम दरवाजे तक बढ़ा ही नहीं रही थी। भाभी, प्लीज बैठ जाइए ना, आपको भाई के साथ घर जाना है। अगर मैं तुम्हारे भाई के साथ गई ना, तो वो मुझे घर नहीं सीधे यमराज के पास भेजेगा, वो भी भैंस खुद ड्राइव करके। अरे मत भेजो मुझे बिस्ट के साथ, अरुणिमा ने नशे की हालत में खुद को खींचते हुए कहा। तुम्हें मैं बिस्ट नजर आता हूँ? आस्तिक अरुणिमा के ठीक पीछे खड़ा था। अरुणिमा रुक जाती है और आभा की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। अरुणिमा ने डरते हुए पीछे की तरफ देखा और सामने आस्तिक को देखकर अपने चेहरे की घबराहट छुपाते हुए लंबी सी मुस्कान के साथ पूरी बत्ती सी चमकाते हुए बोली, अरे पतिदेव, आप यहाँ खड़े हैं? आस्तिक ने अपना हाथ अपनी पैंट की जेब से निकाला और अरुणिमा की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए आभा से कहा, तुम जाओ, रात काफी हो गई है, जाकर आराम करो, सुबह तुम्हें ऑफिस जाना है। आभा डरते हुए हाँ में सर हिलाती है और एक नज़र अरुणिमा को देखकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसे जाता हुआ देखकर अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट आ गई, क्योंकि अब वो आस्तिक के साथ अकेली थी। आस्तिक ने घूरती हुई नज़र से ड्राइवर तिवारी को देखकर कहा, तुम भी जाओ, गाड़ी में खुद ड्राइव करूंगा। अपने मालिक की आवाज़ सुनकर तिवारी कुछ नहीं बोल पाया, उसने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी की चाबी आस्तिक को देकर वहां से चला गया। अब वहां सिर्फ आस्तिक और अरुणिमा खड़े थे। आस्तिक ने घूरते हुए अरुणिमा की नशीली आंखों में देखते हुए कहा, क्या कह रही थी तुम आभा से मैं बिस्ट हूँ? किसने कहा आप बिस्ट हो?
मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा। आपने गलत सुना होगा, आपके कान बज रहे होंगे। मैं तो आभा से ये कह रही थी कि कहाँ है तुम्हारे हैंडसम से भैया जो मुझे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी तक ले जाएंगे, अरुणिमा ने मासूमियत से कहा। आस्तिक उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें गोद में उठाकर गाड़ी तक ले जाऊंगा? अरुणिमा अपनी टिमटिमाती हुई नजरों से आस्तिक को देखते हुए धीरे से बोली, ले जाना तो पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे पैरों को चलने लायक ही नहीं छोड़ा है। आस्तिक घूरते हुए बोला, वो कैसे? अरुणिमा रोती हुई सूरत बनाते हुए अपने पैर की तरफ देखती है। जब आस्तिक ने अरुणिमा के पैर देखे तो उसने जल्दी से अपने पैर पीछे खींच लिए। दरअसल अरुणिमा को पास लाते वक्त आस्तिक ने अपने जूते वाले पैर अरुणिमा के सैंडल वाले पैरों पर रख दिए थे, जिससे उसकी उंगलियां बुरी तरह लाल हो गई थीं। आस्तिक घूरते हुए बोला, अगर मेरे पैर तुम्हारे पैर पर थे तो तुम बता नहीं सकती थी? कैसे बताती, आपकी इन बिलौटे जैसी आंखों से डर गई थी, अरुणिमा ने मासूमियत से कहा। आस्तिक दंग रहकर बोला, बिलौटा क्या? अरुणिमा ने कहा, और नहीं तो क्या, कभी देखा है खुद को आईने में? आपकी आंखें बिल्कुल बिलौटे जैसी हैं, इन्हें देखकर तो कोई भी डर सकता है, तो मैं तो मासूम सी चिड़िया हूँ। आस्तिक अरुणिमा को खींचते हुए बोला, बकवास बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना चिड़िया का शिकार करना इस बास को अच्छी कहाँ से आता है। अरुणिमा ने कदम बढ़ाए तो उसके पैर में तेज दर्द हुआ। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं चल सकती, आपने अपने इस लेदर के जूते से मेरे पैर कुचल दिए हैं। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा को घूरता है और अगले ही पल उसे कंधे पर उठा लेता है। अरुणिमा हैरान रह जाती है, वो इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आस्तिक अब समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वो अरुणिमा को लेकर गाड़ी तक गया और पिछला दरवाजा खोलकर उसे गाड़ी के अंदर धकेल दिया। अरुणिमा गाड़ी में लेट गई थी और गाड़ी इतनी बड़ी थी कि वो पीछे की सीट पर आराम से फैल गई। आस्तिक ड्राइविंग सीट पर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और बैक मिरर से अरुणिमा को देखते हुए मन ही मन गुस्से में बोला, आज तक किसी के लिए ऐसा नहीं किया, लेकिन इस लड़की ने मुझे ड्राइवर बना दिया, इसका बदला तो लेकर ही रहूंगा। बस ये होश में आ जाए, फिर आज रात जो कुछ इसने किया है उसका पूरा हिसाब चुकाऊंगा। वो अरुणिमा को लेकर घर पहुंचा। अरुणिमा गाड़ी में ही सो गई थी, उसे होश भी नहीं था कि आस्तिक उसे कब घर लेकर आया था। घर पहुंचकर आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी गोद में उठाया और लिविंग रूम के सोफे पर पटक दिया। वो उसे उसके कमरे में नहीं ले गया। फिर उसने जूली और रोजी को अरुणिमा के पास छोड़कर अपने कमरे में चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर अरुणिमा को देखा तक नहीं। अरुणिमा बेहोशी की हालत में सोफे पर ही सोती रही। अगली सुबह जब अरुणिमा की आंख खुली तो उसने देखा कि जूली और रोजी के साथ साथ नीरज भी खड़ा था। नीरज ने अपने बैग से एक टैबलेट निकालकर अरुणिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये दवाई खा लीजिए। अरुणिमा हैरान होकर अपने मन में बोली, मैं तो कल रात पार्टी में थी ना, फिर मैं घर कैसे आई? उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिरी बात जो उसे याद थी वो ये कि वो गार्डन में बैठी थी। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, वो सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। नीरज ने दवाई रखते हुए कहा, मैडम प्लीज ये दवाई खा लीजिए, आपका हैंगओवर उतर जाएगा।